भी मैं कुछ कुछ नहीं हूँ।
से गुरु वैष्णवों के अनुगत में जहाँ उपस्थित हुए हैं, यह ब्रजमंडल के अंतर्गत देह वृंदावन में द्वादश वर्णों के अंतर्गत मधुबन के रखा है। अभी हम लोग
क्या बात कर
तालवन होकर मधुबन में आए हैं, जहाँ पर मधुबन बिहारी श्री बलदेव जी और श्री कृष्ण चंद्र ने लीला विलास किया है। यह उनका यह प्रिय स्थान मधुबन। इसी मधुबन के अंतर्गत मथुरा पुरी कहलाता है। तो सबसे पहले जितने भी वर्ण हैं, समस्त वर्णों में इस मधुबन की विशेषता दिख रही है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जितने भी आचार्यगण सभी आचार्यगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तांग प्रभु आए हैं, कृष्ण बलदेव ने सखाओं के साथ में यहाँ पर लीलाएं की हैं। इस तरह से यह मधुबन श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में 15वें अध्याय में जहाँ पर वन विहार के प्रसंग में वृंदावन के लीला का वर्णन होता है, जो कि कृष्ण बलदेव दोनों और गोकुल से वृंदावन को आए। कृष्ण के जब उम्र 3 वर्ष 4 महीना के थी, तब गोकुल छोड़कर नंद बाबा समस्त ब्रजवासी जनों के साथ में वृंदावन में छठे ग्रह में निवास। तो छठे ग्रह से कृष्ण बलदेव दोनों ही वत्स पालक बने और वृंदावन में आसपास के स्थानों में खेल कूद लीला विहार इत्यादि के द्वारा इस प्रकार वत्स पालक यानी बछड़ों को चराया करते। तो उस समय यहाँ पास ही में यह मधुबन है, जिस मधुबन में आकर के सखाओं के साथ में छोटे छोटे गोपियां जहाँ पर हैं, ऐसे सखियों के साथ में विविध प्रकार के लीलाएं की है। यहाँ का वर्णन करते हुए कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, दाऊ भैया देखो ये वृंदावन के इस मधुबन के वृक्ष सब कैसे हैं, यहाँ के भौरे यहाँ के पशु पक्षी कैसे आपका स्वागत कर रहे हैं। कृष्ण के अपने मुखारविंद से वर्णन मधुबन के विषय में, जहाँ पर भौरे गुंजायमान है गुनगुन स्वर से गान कर। तो भौरों के स्वर को मिलाते हुए कृष्ण ने वंशज ध्वनि की शिक्षा की। इस तरह से बलदेव जी से कहते हैं, यहाँ पर कितने प्रकार के मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, जहाँ उन्होंने मधुपान किया है। इस तरह से केवल मधुपान ही नहीं है कि वृंदावन के धूल का लताएं तृण दुर्म आदि सब प्रेम में विभोर है, कृष्ण बलदेव के लिए विभोर हो रहे हैं। तो ऐसे जो ब्रज के तृण गुलम आदि वृक्ष लताएं कृष्ण बलराम को पा करके स्वागत करते हैं अपने भवन में। व्यंजय अंत एव पुष्प फलाक्षा, फल पुष्पों के द्वारा नतशिर होकर प्रणाम करते हैं और आंखों से आंसू बहता है, यानी फूलों से मधु की धारा झरती है। तो ये जो है ये मधु धारा का श्रवण होना ये मधुबन। तो इस प्रकार से ये मधुबन की लीलाएं केवल इतना ही नहीं, सत्ययुग से लेकर के यहाँ पर लीलाएं हुई है। सबसे पहले मधुबन ये जो मधुरा हुआ है, यहाँ पर हमने शत्रुघ्न गोपाल जी का दर्शन किया। तो श्री रामचंद्र जी के भ्राता शत्रुघ्न जी, जबकि श्री राम के साथ में लक्ष्मण जी और भरत जी, इन लोगों ने बहुत सी सेवाएं की हैं। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भैया मुझे भी कुछ सेवा प्रदान करें। बोले कि अच्छा, समय आने पर हम जरूर बताएंगे। इतने में यहाँ के ऋषि मुनि लोग श्री रामचंद्र जी के पास अयोध्या में पहुंचे। उन्हें याद करके उनसे निवेदन किया कि प्रभु मधुवन में मधुदैत्य का पुत्र लवणासुर बड़ा ही अत्याचार करता है, समस्त प्रजाओं का ऋषि मुनियों का संतों का सब का अनादर उत्पीड़न करता है, तो उस दुष्ट का विनाश होना चाहिए। आप पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतीर्ण किए, जैसे लंका में राक्षस राज रावण का विनाश किया ऐसे ही लवणासुर का विनाश करके हम सबकी रक्षा करें। ऋषि मुनियों के निवेदन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई शत्रुघ्न जी से कहा कि तुम्हें लवणासुर को मारना होगा, मधुपुरी में जाना है। तो उसी समय उन्होंने शत्रुघ्न जी को राय तिलक कर दिया कि मधुपुरी के तुम राजा बनो। तो उस समय यह मधुबन था, तो उस मधुबन के उनको राजा बना दिए, राजा की घोषणा कर दी। तो शत्रुघ्न जी जब आने की तैयारी की, उस समय श्री रामचंद्र जी ने उनको उनकी प्रार्थना से बराहदेव जी को दिया था, जो कि लंका से लाए थे कृष्ण बराह, और लवणासुर को मारने के लिए ये लवणासुर के पास में ये त्रिशूल था, जो कि मधुदैत्य ने शिव जी की आराधना करके उस त्रिशूल को प्राप्त किया था, और उस त्रिशूल के हाथ में रहते हुए वह दुर्धर्ष पृथ्वी में अजेय था, कोई उसे पराजय नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि सूर्यवंशी नरेश मंधाता जो कि देवलोक में विजय किया, विजय करने को गए, तो देवताओं पर जब चढ़ाई शुरू करती तब उस समय देवताओं ने कहा अभी भी पृथ्वी पर मधुदैत्य लवणासुर, मधुदैत्य का पुत्र लवणासुर, तो उसका तो अपने विनाश नहीं। तो ऐसे ही लवणासुर जो है मंधाता को भी मार दिया था। तो इतने बड़े दुर्धर्ष ये लवणासुर बहुत काल से यहाँ रहते रहते ऐसे असुरी प्रभाव से अत्याचार फैला दिया, जिससे कि सारे भूमि उजाड़, सब कांटे करील के पेड़ और चारों ओर इस तरह से केवल भूमि खारी बनती चली गई, पानी भी खारा बन गया, इस तरह से पड़ा हुआ था उजाड़। तब उस लवणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न जी आए, श्री रामचंद्र जी ने उनको समझा दिया, यहाँ से चारों ओर पुरी को घेर लिया। इतने में लवणासुर जबकि शिकार करने को गया था घर में उस अस्त्र को छोड़कर, ऐसे समय में पुरी को घेराव कर लिया। लवणासुर जब आया उसके साथ में महासंघर्ष हुआ, उस संघर्ष में शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध करके इस पुरी को बसाया था, इसलिए इस पुरी का नाम तभी से मधुरा हुआ है। मधुरा से परवर्ती काल में इसको मथुरा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है मथुराम यत्र भगवान नित्यम सन्निहितो हरि। यहाँ पर महाराज अमरेश जी भी आए थे, जो चक्रवर्ती सम्राट सशाग्र पृथ्वी के जो राजा है, समस्त राज कार्य मंत्रियों पर दे करके यहाँ पर उपस्थित होकर के इस मधुवन में भगवान की आराधना। आज भी मथुरा में अमरेश जिला प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जहाँ पर दुर्वासा जी के साथ में ये प्रसंग तो आप लोग जानते हैं, दुर्वासा जी आए और उन्होंने भक्तों की परीक्षा ले तो अम्बरीश महाराज जी की महिमा प्रकाशित हुई। भगवान ने अम्बरीश जी के लिए चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, कृप्त राक्षसी को जला डाला और दुर्वासा जी के पीछे पीछे घूमते रहे। एक वर्ष तक घूमते हुए जहाँ पर कहीं भी शरण नहीं मिला, भगवान ने उनको कहा कि अम्बरीश महाराज जी के पास जाओ। तो तभी से ये मथुरापुरी है, मथुरा है, जहाँ मथुरा में सभी राजा लोग जितने भी प्राचीन ऋषि मनीषी हुए हैं यहाँ पर आए हैं भगवान की आराधना करने को, क्योंकि मथुरा जत्र भगवान नित्यम सन्निहितो हरि। महाराज सूरसेन ने भी यहाँ पर मधुपुरी में ही राजधानी बसाई, पर यहाँ पर राजधानी बना करके यहीं पर उन्होंने राज कार्य शुरू कर दिया, राजशासन, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्रीहरि अति शीघ्र ही प्रकट होंगे, उन्हीं के वंश में यह जान गए थे, इसलिए जानबूझ करके समस्त जानवरों के साथ में यहाँ पर निवास करते थे। इसी प्रकार ये जो मधुपुरी है और मधुपुरी के अंतर्गत यह मधुबन मथुरा से संलग्न है, जहाँ पर कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के लीलाएं की। केवल इतना ही नहीं, वेदों में भी वर्णन आता है ओम मधुवातारिपायते मधु चरंत सिंध माध्यन संतोषी गाओ मधुमत पार्थिव अमृत, इत्यादि में कहा है ये मधुवन में मधु है। वो मधु क्या है? कृष्ण प्रेम रूपी मधु, जहाँ पर गोपियों के प्रेमामृत का आस्वादन किया है श्याम सुंदर है, इसलिए यह प्रेमामृत मधु का स्थान है जिस मधु का कृष्ण ने स्वयं आस्वादन किया है, समस्त भक्त जनों ने वितरित किया है, इसलिए यह मधुवन और कलयुग के अंतर्गत स्वयं कृष्ण चंद्र जो ब्रजविलासी हैं गौधरी के रूप में यहाँ आए और प्रेमोन्माद में उन्माद ग्रस्त हो गए, भाव में विवर होकर इन सभी स्थानों का दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु आए सर्वत्र भ्रमण करते ये उद्दंड नृत्य करते लिए चले, समस्त गायों को झुंड के झुंड गायों को देख करके उनके बीच में दौड़ पड़े, कहाँ कृष्ण कन्हैया कहाँ है कन्हैया कहाँ है। इन स्थानों में आकाशवाणी हुई कि ब्रज के कृष्ण अब नवद्वीप नदिया में अवतीर्ण किए, आप कहीं जाए उनका आपको दर्शन मिले। इस प्रकार से यहाँ पर श्री बलदेव जी श्याम बने हैं, जबकि कृष्ण चंद्र बलदेव जी के साथ में अक्रूर के प्रार्थना से मथुरा में आए, मथुरा में आकर के कंस का विनाश किया और जरासंध के 8वें बार आक्रमण में 17 बार तो परास्त करते हुए 18वें बार में रणछोड़ जी बनकर द्वारकापुरी में चले गए और वहीं पर समस्त यदुवंशियों के साथ में निवास करने। ऐसे समय में बलदेव जी, बहुत दिन हो गया कृष्ण अब ब्रज में लौटे नहीं, तो बलदेव जी बार बार यही कहते रहे, अरे भैया तुम रोज दिन तो रोते हो ब्रजवासियों के लिए, ऐसे केवल आंखों से तो आंसू बहाते हो परंतु ब्रज में जाने का नाम गंध नहीं लिया है, तुम चलोगे तो चलो नहीं तो मैं जाता हूँ। तो उन्होंने जब कोई नाम ही नहीं लिया जाने का तो बलदेव जी स्वयं आए, यहाँ आकर के जबकि ब्रज में प्रवेश किया ब्रजवासियों की स्थिति को देखा, नंद बाबा आदि समस्त ब्रजवासी जनों ने उनको तो गले में लगा लिया, आंखों से आंसू से स्नान कराया, ब्रजगोपियां प्रेम में विवल हो गई, उन मरांधा हो गई, उनकी स्थिति को देख करके बलदेव जी भी स्वयं रो पड़े, कोई सांत्वना वाक्य फिर भी किसी प्रकार से ब्रज गोपियों को सांत्वना दिया। तो यहाँ आ करके उन गोपियों के साथ में भ्रमण करते बलदेव जी जब ब्रज में आए, कृष्ण के विरह में उस गोपियों के जो प्रेम जो था इतना उमड़ा हुआ, उस विरहमय विप्रलम्बमय प्रेम में बलदेव जी भी स्वयं डूब गए और डूब करके कृष्ण भाव में विवर होकर श्याम वर्ण के बन गए। इस प्रकार ये मधुवन है जहाँ पर कृष्ण लीला का नित्य स्थान है, इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं, यहाँ के धूल कण को हम आश्रय करते हैं, समस्त गुरु वर्ग वैष्णव या सभी लोग इन स्थानों में उपस्थित हुए हैं, उन्हीं के धारा में हम लोग भी आए हैं, ऐसे गुरु वैष्णवों की अहित की करुणा धाम की कृपा है। ध्रुव जी जो कि 5 वर्ष की उम्र में जिन्होंने भगवान की आराधना की, 6 महीना में ही श्री नारद जी की कृपा पात्र बनकर यहाँ पर आए और यहाँ उन्होंने तपस्या की, जैसे जैसे भगवान का दर्शन किया है अभी हमारे श्रीपाद सुधन्वपुर आप लोगों को मैं यदि बोलूँ तो सुधन्वपुर इंग्लिश में बताएंगे, पहले सुधन्वपुर हम जहाँ उपस्थित हुए हैं यही है ध्रुव टीला, मधुवन के अंतर्गत ये प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर चारों ओर अभी भी झाड़ियाँ बड़ों से सुशोभित इस मधुवन को सुशोभित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्रुव जो है श्याम मणु के नाती है, श्रीमद भागवत में तीनों वंश का वर्णन होता है, चंद्रवंश सूर्यवंश और सर्वप्रथम श्याम मणु का वंश। तो मनु में श्याम मनु सबसे पहले हुए हैं जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुबह के समय में मानस पुत्रों को रचने के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि नहीं बढ़ी, तब उन्होंने प्रकृति और पुरुष के जोड़े को तैयार की जो कि श्याम मनु और शतरूपा की। श्याम मनु के 2 पुत्र हुए हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 कन्याएं हुई हैं आकुति प्रसूति और देवहूति। देवहूति कर्दमाय, आकुति रुचये और प्रसूति दक्ष प्रजापति। अर्थात प्रसूति नाम ने कन्या को दक्ष प्रजापति को दिया, आकुति रुचि को दिया, रुचि नामक प्रजापति को दिया और गर्दम ऋषि को देवहूति को दी। इस तरह से तीन कन्याओं का विवाह हुआ। उसमें से जो कि प्रसूति नाम ने कन्या है, दक्ष प्रजापति से बहुत से पुत्र कन्याएं हुई है। इसी से ये वंश विस्तार हुआ, धीरे धीरे मानव समाज वर्धित हुआ है। अब उनके सांब मनु के जो पुत्र है उत्तानपाद जब राजा हुए तब उनकी दो पत्नी सुरुचि और सुनीति, सुनीति से ध्रुव हुए और सुरुचि से उत्तम। एक दिन बालक ध्रुव छोटे से बालक है 5 वर्ष के, उस उम्र में ही एक दिन पिताजी के गोदी में राज सिंहासन में बैठे हुए थे राजा महाराज, तो उनके गोदी में बैठने गए। इतने में उनकी विमाता सौतली माँ सुरुचि ने देख लिया तो कहा कि ध्रुव तुम पिता के गोदी में, तुम्हारे पिता के गोदी में बैठ नहीं सकते, यदि तुम्हें बैठने की इच्छा है तो तुम ये शरीर को छोड़कर फिर से मेरे पेट में जन्म लो, जबकि तुम अपने पिता के गोदी में बैठ सकते हो, राजा के अधिकारी बन सकते हो। तो इस बात को कांटे की तरह एकदम हृदय में चुभी, तो उस समय बड़े दुखी होकर ध्रुव वहां से चलाया, रोता रहा। इतने में उनकी माँ को दूसरों के द्वारा ये खबर पहुंच गया कि ऐसे ऐसे बालक को कटु वचन कहा, तो बालक दुखी होकर के रो रहा था। तो इतने में मैया भी रोने लगी कि अरे दुखी माँ के दुखी संतान, तो उसके लिए ऐसा ही अपदस्त, आज से ही ऐसी यदि स्थिति हो तो आगे क्या होगा। उस समय उसकी माँ रोती हुई बोली कि देखो इस जगत में एकमात्र सहायक है भगवान श्रीहरि, जो कि श्रीहरि के कमल लोचन श्रीहरि की आराधना करके तुम्हारे पूर्वजों ने इस जगत में भोग वैभव को प्राप्त किया है और पर जगत में भी सुख शांति को प्राप्त किए है, इसलिए तुम कमल लोचन हरि की आराधना करो जो कि तुम्हें सब प्रकार से अनुग्रह करेंगे। ऐसा सुनकर ध्रुव के मन में वह निश्चय हुआ कि मैं भी कमल लोचन हरि की आराधना करूंगा। माता की बातों को सुनकर वहां से निकल पड़े कि कमल लोचन हरि कहाँ है, हरि कहाँ है, जबकि ऐसे घूमते घामते मथुरा के जमुना के किनारे गभीर वन प्रदेश इधर में घूमते घामते आए। इतने में भगवान श्री हरि अंतर्यामी प्रभु नारद जी को भेजा कि नारद जाओ, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसको मार्गदर्शन कराओ। जब जब भगवान कृपा करते हैं, कोई जीव भगवान के प्रति उन्मुख होता है और भगवान की कृपा होती है, तब गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने, अंतर्यामी रूप से स्वयं ही प्रेरणा देते हैं, ऐसे सदगुरु को हमें प्राप्त कराते हैं। ऐसे सदगुरु का प्राप्त जैसे ध्रुव को हुआ है कि नारद जी महाराज वहाँ उपस्थित हुए और आकर के उनकी परीक्षा लिए, बोले कि बालक तुम यहाँ पर कैसे इस गभीर जंगल में कहाँ घूम रहे हो, घर जाओ, यहाँ तो बाघ भल्लू शेर गद्दार हैं, तुम्हें खा जाएंगे, यहाँ तो नहीं रहना चाहिए, यहाँ से जल्दी भाग अपने घर लौट जाओ। बोले कि नहीं, मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मैं तो घर छोड़ करके आया हूँ, मैं श्रीहरि की आराधना करूंगा। बोले क्यों, क्या बात है? बोले मेरी सौतेली माँ ने मुझे कटु वचन कहा है, इसलिए मैं घर नहीं लौटूंगा, मुझे राज सिंहासन में नहीं बैठाएंगे और ना ही पिता के गोदी में बैठने दिया है, इसलिए मुझे भजन करना है। बोले अरे ऐसे छोटे छोटे बातों को कभी सुनना नहीं चाहिए, ये तो भूल जाना चाहिए, तुम बालक हो, अभी बालकपन में ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के बवंडर नहीं मचाना चाहिए, तुम लौटो। तो बहुत सी परीक्षा की, फिर भी बालक नहीं लौटे। बालक ने कहा कि मैं क्षत्रिय बालक हूँ, युद्ध में तो सामने मरना जानता हूँ, कभी पेट दिखाना हमारे लिए कर्तव्य नहीं है, मैंने सीखा नहीं, इसलिए हमें तो हरि की आराधना करनी होगी। ऐसा निश्चय देकर तब नारद जी ने कहा अच्छा यहाँ जमुना में तुम स्नान करके आओ, तो जमुना में स्नान करके आए। इतने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादश अक्षर मंत्र उनको प्रदान किया और विधि विधान से बतला दिए। बोले कि इस तरह से इस मंत्र का जप करो, एक निश्चय होकर के भजन करते करते जरूर तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा। तब नारद जी के आदेश से वो बालक ध्रुव इसी स्थान पर आए, यहाँ जो ध्रुव जी और ध्रुव नारायण जी का दर्शन कर रहे हैं, तो 6 महीना तक उन्होंने तपस्या की। पहले महीना में तो कहीं कुछ भोजन कर लिया और भगवान मंत्र का जप करने लगे। दूसरे महीना में भोजन भी छोड़ दिया। तीसरे महीना में अब 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार खाने लगे। ऐसे चौथे महीना में 15 दिन में एक बार, 5वें महीना में पत्ता और खा करके और फिर ऐसे हवा पी करके ही रह गए। 6वें महीना में जा करके प्राणवायु को रोक लिए। प्राणवायु को रोकते ही सारे पृथ्वी एकदम टलमल होने लगी, जैसे कि नाव में हाथी चढ़ जाए ऐसी स्थिति। तो देवता लोग घबरा गए कि एक बालक ध्रुव के अंगूठे टेक करके, पैर जमीन पर अंगूठे टेक करके तपस्या कर रहा है और उसके तपस्या का बल इतना है कि सारे पृथ्वी हिल गई है। अब तो भूकंप मचा, भूचल आ गया है और सारा संसार नाश हो जाएगा। उस समय देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप जल्दी से दर्शन दें। तब भगवान श्रीहरि उनके हृदय में प्रकट हुए और हृदय से, हृदय में दर्शन देते हुए जब बाहर आ गए, प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिया, तब ध्रुव ने देखा कि अरे प्रभु का तो अब दर्शन नहीं हो रहा है। तब आंखें खोली, देखा कि सामने प्रभु विराजमान है। उस समय उनकी स्तुति प्रार्थना की तो भगवान बोले कि ध्रुव तुम वर मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु आप तो जानते हैं, बोले कि अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर कुछ कामना वासना रही है, राज्य प्राप्ति की लालसा, ठीक है आज से तुम्हें 36,000 वर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा और मेरे लोग तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, तुम मेरे अच्छे लोग को प्राप्त करोगे। राजकार्य करते हुए अंतिम समय में मेरे चरणों में भक्ति लाभ करके समस्त सब को छोड़कर मुझको एकांत रूप से प्राप्त करोगे। इसलिए ध्रुव ऐसे वरदान पा करके प्रभु के स्तव स्तुति प्रार्थना की, प्रभु भी अंतरित हो गए। जब लौटने लगे इतने में बालक के मन में आया, अरे ये मैंने क्या किया कि प्रभु से मैंने संसार की वस्तुओं को मांगा। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितोऽयं त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं काचं विचिन्नन्नपि दिव्यरत्नं स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि परं न जाति। हे प्रभु हम आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए हैं, हमें कोई वर की अभिलाषा नहीं, हम तो ठग गए हैं कि कांच खोलते खोलते और कांचन मिल गया और कांचन को पा करके उसे फेंक दिया और फिर कांच के टुकड़े में हम रम गए, इस संसारिक वस्तुओं में हम फंस गए। हाय हाय मेरे अंदर ऐसी कामना क्यों आई। तो पश्चाताप करते हुए ध्रुव महाराज ऐसे भगवान के चरणों में भक्ति लाभ के। श्रीमद् भागवत में 4th स्कंध में इस ध्रुव प्रसंग में कहा है कि भगवान के चरणों में ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह समुदाय हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं उनके चरण चिन्ह विराजमान हैं। तो अंकुश आदि इसका क्या काम है, ये चिन्हों से क्या लाभ होता है। भगवान के चरणों में जो अंकुश है, अंकुश क्या करता है, बहुत बड़े मत वाले हाथी को एक छोटे से लोहे का अंकुश उसको बच कर लेता है। ऐसे भगवान के चरणों में जो अंकुश है, हमारे मत वाले मन रूपी जो हस्ती है, मन रूपी हाथी बेपरवाह है, यह किसी की बात नहीं मानता है। तो भगवान के चरणों में जैसे भक्त आश्रय ग्रहण करता है तो उनके चरणों के अंकुश उसके मन को पहले ही मजबूत कर लेता है, इसी तरह से उनके चरणों में अनुरक्त हो जाता है। इसलिए भगवान भक्तजन भगवान के चरण कमल को सबसे पहले आश्रय करते हैं। यह ध्रुवटीला है, ध्रुव जी का स्थान है, सत्यजीव से यह प्रसिद्ध स्थान। ऐसे ही केवल एक युग का नहीं, कितने युग युगांतर बीते जा रहे हैं। श्यामु मनु ब्रह्मा जी के पहले संध्या में पहले बार एक बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो इस तरह से युग युगांतर कल्प कल्प बीतते जा रहे हैं, एक कल्प में एक बार आए हैं तो अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो कितने लंबे समय से यह टीला है, ये बाण है, इस तरह से ध्रुव जी का स्थान आज भी प्रसिद्ध है। हम इन्हें स्थान को प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्रपुर कुछ सुनाएंगे।
तो द्वार में बैठे
नहीं, नहीं महाराज,
हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वर्तमान, इसका नाम है बाटी ग्राउंड, बाटी अभी प्राचीन नाम इसका बहुलावन है। ये उपवन है, वन तो 12 है, 12 उपवन है और 12 शाखा वन है, और एक एक वन के अंदर में जाने कितने कितने वन है। यहाँ हम वृंदावन अभी बसा हुआ है, उसमें अटल लावन, बिहार वन, कुंज वन, निधु वन, निकुंज वन, किशोर वन, न जाने कितने वहां पर वन है। तो एक एक वन के अंतर्गत माने जाने कितने कितने हैं। तो ये शाखा वन एक तरह से इसको कह सकते शाखा वन माने एक वन भी है। तो 4 वन माने मधुबन, ताल वन, कुमुद वन, ये बहुला वन, फिर इधर में काम्य वन, खदीर वन, कोकिल वन, ये मूल है इस तरफ में जमुना के इस पार में, और उसी के अंदर में बिहार वन इत्यादि हजारों वन है, और जमुना के पार में भद्र वन, भंडीर वन, माठ वन, बेल वन, वृंदावन, महावन और लौह वन, ये द्वादश वन मूल है। तो ये द्वादश वनों में से एक ही है जहाँ पर हम लोग आए हैं। बहुला वन का के संबंध में ये बतलाएंगे, बतलाने के बाद में मैं विशेष रूप से जो बातें हैं मैं बतलाऊंगा। अभी इनके मुख से, ये ब्रजवासी हैं, यहाँ पर बहुत दिनों से सेवा पूजा करते हैं, वैष्णव भी है, वल्लभाचार्य संप्रदायगत वैष्णव भी हैं। वल्लभाचार्य के पास में वो गद्दी है, इसको क्या कहते हैं,
बैठक
कहते हैं, वो भी है। आप इनके मुख से पहले सुनिए। बहु मने अधिक प्रेम को ला देता है, जो वन में इसमें आएगा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेगा उसको कृष्ण प्रेम होता है, इसलिए इसका नाम बहुला वन है। दूसरी बात, यहाँ पर ये सरोवर देखते हैं, इस सरोवर के पास में कभी कोई गाय पानी पीने के लिए आई, एक सिंह देख रहा था, झट उस पर आक्रमण किया, सिंह अथवा बाघ, गाय डकरने लगी, रोने लगी, हमें मत मार क्योंकि मेरा बच्चा बछड़ा भूखा है और वो घर पर है, मैं अंततः अंतिम बार उसको अपना दूध पिलाऊं, तब तक तुम हमको छोड़ दो। उसने कहा झूठी बात, तुम आएगी जाएगी अब फिर नहीं आएगी, सुनेगा नहीं, उधर उधर देखेगा, फिर तुम नहीं आएगी। उन्होंने भगवान की शपथ की, गाय ने, जब हमको छोड़ दो हम जाते हैं पिला करके दूध आएगी। गाय गई और बछड़े से मिली, रोने लगी, बोलिए बेटा अंतिम बार तुम खूब दूध पी लो, जितना दूध पीना है पी लो। मैया तुम रो क्यों रही है, तो तुम दूध पी लो तब बतलाऊंगी। उसने कहा बछड़े ने, मैं दूध नहीं पीता, पहले बतलाओ तब दूध पीऊंगा। कहिए तुम पी लो, किंतु वो किसी तरह से नहीं पिया। तब उसने बतलाया, मैं पानी पीने के लिए इस सरोवर पर आई और सिंह ने मुझे पकड़ लिया, मुझे मार करके खाना चाहता था, मैंने उससे बहुत ही विनती की, भाई किसी प्रकार से मुझे छोड़ दो, मैं बच्चे को दूध पिला करके आऊं। अंत में मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं आया हूं, मैं तुम्हें दूध पिला करके और आनंद के साथ में जाऊंगी और अपना कर्तव्य निभाऊंगी। तुमको मेरी बहन है, तुम्हारी मौसी लगेगी, वो तुम्हारा पालन पोषण कर देगी। बछड़े ने कहा, जन मैं तो दूध पीऊंगा मैं कुछ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा, तुम रह जाओ मैं जाऊं, गैया ने कहा नहीं, गैया लौटने लगी तो बछड़ा भी लौट आया। जब यहाँ पर आए तो सिंह तो बड़ा प्रसन्न हुआ, ये तो आ गई, एक बछड़ा भी आ गया,
दो आ गए।
मन तो कुछ बदल गया था, तो भी आक्रमण करने की जैसी तैयारी की, कृष्ण हाथों में बंसी लिए हुए वहां पर उपस्थित हुए और साथ ही साथ में उसको दर्शन दिया। उसको मारने की हिंसा इत्यादि सब खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब सभी लोग प्रसन्न हो गए, वो सिंह भी भक्त बन गया, गाय तो थी ही, बछड़ा थी वैसे ही। तो ये पीछे की बात है, किंतु इसके पहले कृष्ण का यह रासमंडली है, बहुत ही सुंदर उस समय का सरोवर होगा, कमल खिले रहते थे, भंवरे इस पर गुनगुन करते थे, कोयल कुहकती थी, मोर सब नृत्य करते थे, अभी भी मोर हैं। शाम होते ही या सवेरे होते ही के का इत्यादि करते हैं, के किस लिए करते हैं और का के माने कौन, पुल्लिंग में होता है कौन माने कौन पुरुष, राधा जी के धैर्य को, राधा जी के मान को, राधा जी के लज्जा को, ये सब पर्वत हैं। इस पर्वत को चूर्ण करने वाला कौन है, कृष्ण। जहाँ बंसी बजाई और कृष्ण का मुख देखा, इनका मान धैर्य लज्जा कूल सब कुछ इनका दूर हो जाता है और एकदम मिल जाती है। और का ये स्त्रीलिंग में कौन, तो कृष्ण रूपी मत्त हस्ती को उनके पैरों में जंजीर बांध करके उसको कौन वशीभूत कर देता है, कंट्रोल करता है, जिससे कि उसके अंकुश के आघात से वो उठता है और बैठता है। मत्त हस्ती वो कौन है, राधा जी है। इसलिए ये लोग के काक करते हैं। इस वन में अब पहले ये घोर वन था, इसमें आना बड़ा भारी कठिन था। कृष्ण ऐसे ही वनों में जाते थे, गोपियां वहां सखाओं के साथ में गोचारण करते और उसी के बहाने में कहीं न कहीं गोपियों से मिलते थे। ये रास मंडल है, यहाँ पर रास इत्यादि करते थे। चैतन्य महाप्रभु जी समय आए, उसमें बहुत बिहड़ बंद था, ये बस्ती पस्ती कहीं अलग थी, और उसमें उन्होंने इन सारी पक्षियों को देखा। महाप्रभु को देखते ही एक सूक और सारी
मैंने
दोनों एक कदम के पेड़ के ऊपर में बैठे हुए डालियों पर और परस्पर झगड़ रहे थे। सूक ने कृष्ण का पक्ष लिया और सारी ने राधा जी का पक्ष लिया, और वो कहता है ये हमारे कृष्ण बड़े हैं, और सारी कहती है मैना हमारी कृष्ण जी राधा जी बड़े हैं। जो जो सु कहता है उसका वो खंडन करती है, और अंत में दोनों में सुलहनामा होता है, दोनों इस पर राजी होते हैं, कृष्ण भी बड़े हैं, राधा जी भी बड़े हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी इस स्थान में आए और जब सुना तो बड़े आह्लादित हो गए, बस एक तक से सुनते रहे। वृंदावन बिलासिनी राई अमादेर अमरा राई ये राई अमादेर, क्या तात्पर्य। वृंदावन में जो विलास करने वाली श्रीमती राधिका जी हैं वो हमारी हैं, वो निश्चित रूप में हमारी हैं, निश्चित रूप में, किंतु हम भी राई के हैं, राधा जी के हम हैं, राधा जी की किंकरी हम हैं। सारी ऐसे बोल रही थी, हम राधा जी की किंकरी हैं। सुख से सहन नहीं हुआ, वो सहन नहीं सका, अजय क्या कर रही हो, राधा जी की तुम हो, कृष्ण का नाम नहीं लिया, अरे राधा जी भी तो कृष्ण की हैं, इसलिए तुम ये कहो कि हम
कृष्ण की
हैं, कृष्ण बड़े हैं, वही तो भगवान हैं, वही सब कुछ है। साधारण रूप में कृष्ण के ही लोग भजन करते हैं, किंतु यदि राधा जी का भजन नहीं किया जाए तो कृष्ण का भजन एकदम निरर्थक है। शुक कब कहने लगा, शुक बोले अमार कृष्ण मदन मोहन, हमारे जो कृष्ण हैं ये मदन को ही मोहित करने वाले मदन मोहन जी हैं। संसार में और लोगों की तो छोड़ दो, शंकर जी भी मोहिनी रूप देख करके एकदम उनके पीछे पीछे भगे और उनका मृगछाला या बाघछाला न जाने कहाँ खिसक गया, त्रिशूल भी हाथ से गिर गया, काम में मोहित हो गए, लज्जा भी उनकी गिर गई, ऐसे जोर से भगे है? तो ये शू कह रहा है ये कृष्ण हमारे मदन मोहन। ब्रह्मा जी भी को भी कामदेव ने परास्त कर दिया, सब देवता लोग इंद्र इत्यादि चंद्र के लिए सुना जाता है, किंतु कृष्ण मदन को भी मोहन करने वाले हैं। सारी बोले अमार राधा पामे जतो खान नहीं ले सुधु ही मदन। सारी कार्य बेसी मत पढ़ाई करो, डिग मत थाको। राधा जी हमारी बाएं तरफ में जब तक कृष्ण के हैं तब तो मदन मोहन है, और नहीं तो केवल मदन है, मदन मोहन नहीं है। सुख बोले अमार कृष्ण गिरी धरे छिलो। सुख बोलता जी अपनी राधा जी की इतनी बड़ाई मत करो, राधा जी ने पर्वत धारण किया कहीं, हमारे कृष्ण ने तो पर्वत धारण गोवर्धन को कानी अंगुली पर उठा लिया। सारी कहती है अधिक मत तुम सेखी बखारो। सारी बोले अमार राधा शक्ति सांचारी लो नैले पारी बेकेनो। हमारी राधा जी ने कृष्ण के अंदर में प्रवेश करके शक्ति का संचार किया, तब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, राधा जी ने अपने नेत्रों पर ही गिरिराज को उठा दिया, ऐसी बात। इसलिए ये बाएं हाथ और बाएं हाथ में भी बाएं तरफ की अंगुली, और अंगुली माने क्यों, कृष्ण के बाएं तरफ में राधा जी रहती हैं, इसलिए उन्होंने उठाया है, कृष्ण ने नहीं उठाया। सारी बोले हमारा राधा शक्ति संचारी, हमारी राधा जी ने शक्ति संचार किया इसलिए कृष्ण ने उठाया, नहीं तो वो कैसे कर सकता था। राधा जी नहीं रहने से वो निर्विशेष ब्रह्म हो जाता है, तो फिर उसमें शक्ति कहाँ से आएगी। सुख बोले अमार कृष्ण माथा है मयूर उपाखा। अरे देखती नहीं है, हमारे कृष्ण के सिर पर मयूर पंख है, मोर का पंख कितना सुंदर है, विश्व का जितना रंग है सब उसी में आ गया है, इतना सुंदर है, इसलिए कृष्ण उसको धारण करते हैं। वो कहती है सारी बोले अमर राधा नाम टी ताते लेखा ए जे जाए देखा। जानते हो मयूर पंखा किस लिए, अरे हमारी राधा जी का नाम उसमें लिखा हुआ है, मोर पंख में, मोर पंख को भीतर में देखना वो ऐसे आकार और भव जैसा लिखा रहता है, देखना कोई मयूर पंख बीच में जो ऐसा होता है ना, उसमें राधा का नाम उसमें है, इसलिए कृष्ण उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। सुख बोले अमर कृष्ण चूड़ा बामे हिले। देखो तो कृष्ण के बाएं तरफ में कितना सुंदर रूप से वो झुका हुआ है चूड़ा,
चूड़ा।
सारी बोले अमर राधा चरण पावे बोले चूड़ा ताईते हिले। सारी कहती है कि हमारे राधा जी के चरण को स्पर्श करने के लिए मुकुट झुक गया। सुख बोले अमर कृष्ण जगत चिंतामणि। सुख आ रहा है महाप्रभु जी सुन रहे हैं और तन्मय होकर के रोमांच कम पुलक हो रहे हैं। राधा वो कह रहा है कि हमारा कृष्ण चिंतामणि है। सारी बोले अमर राधा प्रेम प्रदायिनी तुम्हार कृष्ण जानी। वो तो कहते हैं चिंतामणि, किंतु राधा जी कैसी हैं, चिंतामणि की भी चिंतामणि, वो प्रेम को देने वाली हैं। कृष्ण यदि प्रेम दें उतना नहीं देंगे जितना कि राधा जी प्रेम देंगी, इसलिए वो प्रेम को देने वाली हैं। सुख बोले अमर कृष्ण बांसी करे गान। सुख होता है। कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, सारी बोले सप्त बटे राधार नाम नैले मिछाई गान। कृष्ण बंसी बजाते हैं ठीक है, किंतु कृष्ण बंसी में क्या बजाते हैं? राधा जी का नाम राधे राधे बोलते हैं, और नहीं तो बेकार हो, उसको कोई पूछेगा नहीं। बंसी तो बहुत से बजाने वाले हैं, किंतु ये कृष्ण राधा जी का नाम उस बंसी से बोलते हैं। कृष्ण बोले, सुख बोले, अमर कृष्ण जगत तेरे गुरु। सुख राज कृष्ण हमारे जगत के गुरु हैं। सारी बोले अमर राधा बांछा कल्प तरु नहीं ले के कार गुरु। कौन किसका गुरु? राधा जी हमारी बांछा, कृष्ण की बांछा को पूर्ण करने वाली है। कृष्ण की इच्छा जो होती है बांछा को कौन पूर्ण करता है? वो चिंतामणि हो, किंतु उनकी भी इच्छा को पूर्ण करने वाली ये राधा जी हैं। सुख बोले हमारा कृष्ण प्रेमेर भिखारी। सुख कहता है हमारा कृष्ण जो है वो प्रेम का भिखारी है। सारी बोले हमारा राधा प्रेमेर लहरी, प्रेमेर ढेऊ किशोरी। कृष्ण प्रेम के भिखारी हैं, और वो कैसी हैं? प्रेम की लहरी हैं। कृष्ण को ऊपर से डुबा देंगी,
प्रेम से डुबा,
और डूब जाएंगे कृष्ण उसके बीच में, ऐसी वो राधा जी हैं। सुख बोले हमारे कृष्ण कदम तलाया थाना। सुख राज हमारा कृष्ण कदम के तले में रहते हैं, वहीं पर वो विश्राम करते हैं। थाना माने यहाँ पर रहना, प्रवास स्थान। सारी बोले हमारा राधा करे आनो गुना नैले मीछे ही थाना। हमारी राधा जी वहाँ आती जाती हैं कदम के तल में, जमुना के किनारे, इसलिए कृष्ण आते जाते हैं। और राधा जी न रहे तो कदम पर तो कितने पड़े हैं, क्यों नहीं जाते? सुख बोले अमर कृष्ण जगत आलो। सुख कहता जे कृष्ण हमारे जगत के प्रकाश हैं। सारी बोले अमर राधा रूपे जगत आलो नैले अंधकार कालो। सुख कहता है जगत के ये आलो माने प्रकाश हैं, और सारी कहते हैं कृष्ण तो वैसे काला है, राधा जी अपने प्रकाश से उनको भी प्रकाशित कर देते, नहीं तो केवल अंधार केवल कालो हैं। सुख बोले अमर कृष्ण राधिका दासी। सुख राज जितना कहो राधा जी तुम्हारी कृष्ण की दासी हैं। सारी बोले सत्य बटे ठीक कह रहे हो, साक्षी आछे बांसी, ये बंसी उसकी साक्षी है, और नहीं तो है तो काशी बासी। राधा जी तेरी नहीं रहती ना तो कहाँ होते
काशी में बात करते।
क्यों निर्विशेष परम रहते काशी में रहते, वो तो राधा जी के वजह से रसो वही सह रसिक बने हैं, इसलिए ये वृंदावन में ये हैं, सबके उपास्य हैं। राधा जी नहीं रहती वो काशी और हरिद्वार के उस पार में रहते। सुख बोले अमर कृष्ण करे बरिशन, कृष्ण हमारी वर्षा करते हैं। सारी बोले हमारा राधा स्थगित पवन, सेजे स्थिर पवन, राधा जी स्थिर पवन है, नहीं तो आंधी से उड़ा देंगी तो वो वर्षा का नजने कहाँ चली जाएगी। सुख बोले अमर कृष्ण जगतेर जीवन। सारी बोले हमारा राधा जीवन एक जीवन। सुख कहता है कृष्ण जीवन के जीवन है, और ये कहते हैं कि जीवन के भी जीवन ये कृष्ण है, नैले कार के कार जीवन। सुख बोले अमर कृष्ण कालिंदी रे जौ, वो कहता है ये कृष्ण कालिंदी के पानी है। पानी माने कृष्ण उसमें स्नान करते हैं तो वो भी काली बन जाती है ना,
अच्छा।
यमुना जी उनके रंग से। सारी बोले अमर राधा ता है सतदल। सतदल माने होता है सतदल कमल, उस यमुना में कमल के रूप में है, नहीं तो यमुना सुभा नहीं है यमुना, ये राधा जी के वजह से ही है। सुख बोले अमर कृष्ण वृंदावन चांद, वृंदावन के वो चांद है। और सारी बोले अमर राधा एक चांद धरा फांद। माने क्या? चांद को पकड़ने के लिए वो जाल के स्वरूप है राधा जी, जो अपने अंग के सौंदर्य से माधुर्य से कृष्ण को भी पकड़ लेती है और अपने जाल में बंद कर देती है। तखन सुख बोले सारी आर के अनुबंध। तसु कहता जे भाई अब तुमसे अब झगड़ा करके कोई लाभ नहीं है, अब हम लोग में सुलह हो जानी चाहिए। राधा कृष्ण दू जान आर केहू नहीं मंद, राधा और कृष्ण में कोई मंद और कोई बड़ा नहीं है, दोनों एक ही हैं। दू जनाई ये भाव दोनों ही अच्छे हैं। सुख सारी दू जनार बंद घुचे गेलो, राधा कृष्ण पीते एक बार हरी हरी। बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा जैसे हमारा इस वन में आना हमारा सार्थक हुआ। नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैताचार्य जी, हमारे गौड़ीय वैष्णव सब लोग, रूप गोस्वामी से लेकर के अभी तक भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद, हमारे गुरु जी, हम अपने गुरु जी के साथ में यहाँ पर हम समझते हैं कि 1954 में यहाँ पर मैं आया और पैदल परिक्रमा की थी उस समय, और उस समय सबसे बड़ा मजदूर मैं था। सब तंबू को लगाना लगवाना ये सब काम आगे का करता था, तो ये सब बनो मैं उनके साथ में पैदल आया हूँ। इच्छा होती है ये पैदल करूँ किंतु सामर्थ्य नहीं होते, नहीं तो इच्छा करती है कि हमें जरूर पैदल करूँ, क्योंकि भगवान यदि शक्ति देंगे तो अगले वर्ष देखा जाएगा। बोलो गौर प्रमाण बनती। आप लोगों ने कुछ कुछ प्रणामी दिया कि नहीं? नहीं तो थोड़ा थोड़ा जहाँ जाएंगे थोड़ा थोड़ा कहीं प्रणामी देंगे।
नंदन अवीन भगवान सतिर नंदन उत्तम अधम किछु न बचल जसिया दिल कोला उत्तम अधम किछु न बचल जसिया दिल कोला उत्तम अधम किछु न बचल जातिया दिल कोलाम अधम किछु न बचल जातिया दिल कहे प्रेमानंदे एमन गौरंगे कहे प्रेमानंदे एमन गौरंगे कहे प्रेमानंदे एमन गौरंगे प्रेमानंदे मन गौरंगे अंतरे धोरिया भोला अंतरे धोरिया भोला चिरानंदन अवीने मन चिरानंदन अवीने चिरानंदन अवीने
सूरुन्मिले समझे न तस्वये स्वेगुरवीरा।
हम लोग गुरु वैष्णवों के आनगत में जहाँ उपस्थित हुए हैं, यह मथुरा के मध्यवर्ती मध्यकर्णिका स्वरूप अनंत पद्मनाभ जी का स्थान है। जबकि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने यहाँ पर मथुरा में प्रकट हुए और देवकी वसुदेव के सामने और यहाँ से गोकुल गए। गोकुल में जा करके निराए कि वहाँ 2.5 वर्ष तक 3 वर्ष 4 महीना तक, इसके बाद में वृंदावन में छठे ग्राम में निवास किए। वहाँ से उन्होंने बल पौगंड और कैशोर की लीलाएं की हैं। इसी प्रकार से ब्रज के अंतर्गत द्वादश वर्ण 12 वर्णों में वन विहार करते हुए गोचारण के साथ में विविध प्रकार के सखाओं के साथ में सखिन के साथ में लीलाएं की हैं। इसके पश्चात 11 वर्ष 8 महीना के हुए तब कृष्ण बलराम अर्जुन के द्वारा प्रार्थित होकर मथुरा में आए, यहाँ पर कंस का वध किया। यहाँ कंस के वध करने के पश्चात 17 बार तक मथुरापुरी में 23 अक्षयणी सेना लेकर के जरासंध आए। 17 बार तक सारी सेनाओं को उन्होंने समाप्त किया। 18वें बार में जब कालजवन आए 3 करोड़ सेना लेकर के मथुरापुरी का आक्रमण किया, तो उस समय उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों पर भारी आपत्ति आएगी और इससे समस्त भक्तजनों को बड़ा कष्ट होगा। तब उन्होंने रणछोड़ जी बन करके द्वारका को प्रस्थान किए, तो द्वारका में समुद्र के मध्य में अपनी पुरी बसाई। तो द्वारकापुरी कुशस्थली में निवास करते हुए 125 वर्ष तक उन्होंने लीलाएं की है। इस प्रकार से कृष्ण की लीला अंतर्धान होने के पश्चात उनके नाती प्रपौत्र प्रणाती बजनाब जी ने मथुरापुरी के इस मथुरा मंडल के सुरसेन देश के राजा बने। पांडवों ने उनको राज्याभिषेक करके दिया था। तब श्री बजनाब जी ने मथुरापुरी का पुनर्स्थापन किया। जबकि कृष्ण के और समस्त यदुवंशियों के द्वारका में चले जाने के बाद ये ऐसे खाली पड़ा हुआ था और यहाँ पर फिर से प्रजाओं को बसा करके और मंदिरों की स्थापना कर शिव विग्रह की स्थापना करके पुनर्जागरण किया था। इसलिए बजनाब के द्वारा प्रतिष्ठित चारों विष्णु में अनंत पद्मनाभ और चार देव में गोविंद देव, केशव देव मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव और गोवर्धन में हरि देव, दाऊजी में बलदेव, ऐसे चार देव चार विष्णु इत्यादि करके ऐसे ऐसे स्थापना की है वैजनाथ जी ने। इसी प्रकार कुंड और सरोवरों की स्थापना की है। चार विष्णु जो है मध्य कर्णिकार में अवस्थित है। तो ये विष्णु के रूप में जो महाविष्णु है गरुड़ साई विष्णु, जिनको अनंत पद्मनाभ कहा जाता है, जिनके नाभि सरोवर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और विश्व की रचना की है। विश्व की रचना में ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक कल्प होता है, एक दिन में 1000 चौकड़ी बिज जाती है। 1000 चौकड़ी के अंदर में 14 मन्वंतर होते हैं, 14 मनु में जो कि वर्तमान वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। इस प्रकार से एक कल्प जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है। एक दिन के अंदर भगवान के लीलावतार 41 जन प्रकट होते हैं, जो कि नित्य धाम में वैकुंठ से ब्रह्मांड से परे, ब्रजा से परे, वैकुंठ आदि धामों में, गोलक वृंदावन में जो कृष्ण के नित्य विहार है, नित्य लीलाएं हैं, उन लीलाओं को इस जगत में भी प्रकट करते हैं। जैसे कि अभी वैवस्वत मन्वंतर के 16वें चतुर्युगी में भगवान वराहदेव जी का आविर्भाव हुआ है, 8वें चतुर्युगी में वामनदेव जी का आविर्भाव हुआ है, तो 22वें चतुर्युगी में वामनदेव जी का आविर्भाव हुआ है, 24वें चतुर्युगी में भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ है और 28वें चतुर्युगी के द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ है। इसी प्रकार ऐसे लीलाओं का क्रम है जो 41 अवतारों का वर्णन आता है लीलावतारों का, और 1000 चतुर्युग में 1000 युगावतार आते हैं, 4000 युगावतार। इसी तरह से गुणावतार, मन्वंतर अवतार, सत्ताविशावतार और वैभव आदि करके असंख्य अवतार भगवान के जगत में प्रकट होते हैं और लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो सब के मूल समस्त अवतारों के आदि अनादि निदानम मूलम बीजम, मूल बीज स्वरूप अनंत पद्मनाभ को कहा जाता है, जो कि उनसे समस्त अवतार आदि प्रकट होते हैं इस तरह से। परंतु इनमें से जो परावस्था अवतार है, जो कृष्ण राम और नृसिंह आदि, ये नित्य धाम में है, गोलोक विहार श्रीहरि हैं, यहाँ आकर के प्रकट होते हैं, इन धाम के रक्षक हैं, ये ब्रह्मांड को पृथ्वी को जहाँ पर अनंत पद्मनाभ ये ब्रह्मांड के अंदर शयन किए हैं, उनके नाभि से ये कमल निकला और ये समस्त ब्रह्मांड का निदान स्वरूप स्वयं ही एक रूप में विराट विश्व रूप बने। इसी प्रकार भगवान स्वयं काल रूप में सबको डराते हैं, अंतर्यामी रूप में सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और भक्तों के प्राणदान होकर के भक्तों की सेवा को ग्रहण करने वाले, प्रेम को बढ़ाने वाले ऐसे जो लीला पुरुषोत्तम हैं, हम उनका नमन करते हैं। इस स्थान में प्रणाम करते हुए आप सभी लोग कुछ कुछ प्रणामी देते हुए यहाँ से प्रस्थान करें, जबकि द्वारकाधीश में अभी जाना है, आप 2 मिनट
आदि बराह कृष्ण बराह जी का स्थान है, जो कि कल आप लोगों ने महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया था। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश से उनके भ्राता शत्रुघ्न जी मथुरापुरी में आए, मथुरापुरी में आकर के लवणासुर का संहार किया, उसी समय बराहदेव जी की स्थापना हुई। ये आदि बराहदेव केवल आज के ही मूर्ति नहीं है, यह मंदिर केवल आज का ही नहीं है, बहुत प्राचीन से विग्रह है। जबकि ये कैलाश में कुबेर के द्वारा सेवित विग्रह श्री बराहदेव जी हैं, ये कैलाश में ही थे। रावण ने कैलाशपति शिव जी की आराधना करके उनको प्रसन्न करके स्वर्णपुरी लंका तथा बराहदेव जी को लेकर के भारत के दक्षिण समुद्र में लंकापुरी को बसाया था और बराहदेव जी को रखा था। अपने भाई विभीषण से बराहदेव जी की पूजा करते थे। जबकि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय किया, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती के सहित सवंश रावण का ध्वंस किया, उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी अयोध्या में लौटते समय श्री बराहदेव जी को साथ में ले गए। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भी बराहदेव जी की सेवा पूजा की। जबकि उनके भाई शत्रुघ्न जी भाई को छोड़ करके आएंगे, श्री राम ने उनको अयोध्यापुरी में ये मथुरापुरी में उनको राज्याभिषेक कर दिया है, तो भाई के विरह में कैसे रहेंगे। तब श्री राम ने कहा अच्छा इस बराहदेव जी को तुम साथ में ले जाओ, इन्हीं की सेवा पूजा करना। तो शत्रुघ्न जी यहाँ लवणासुर का वध करके जैसे जैसे मथुरापुरी को बसाया, मथुरापुरी को बसा करके यहाँ पर बराहदेव जी की स्थापना की और सेवा पूजा करते रहे। इस प्रकार ये जो आदि बराहदेव हैं, ये आदि बराहदेव के विषय में ऐसे वर्णन आता है, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के एक कल्प में, जबकि प्रलय के शाम के समय प्रलय हो जाता है, 12 घंटे की रात्रि में 1000 चतुर्युग के समान लंबे प्रलय में पृथ्वी रसातल गता हो जाती है। तो पानी के अंदर समाई हुई पृथ्वी को फिर से कैसे उद्धार करें, जबकि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दो भाग करके शैंभु मनु और शतरूपा को प्रकट किए प्रकृति और पुरुष के रूप में, प्रजाओं के सृष्टि के लिए उनको आदेश दिया कि तुम लोग प्रजाओं की सृष्टि करो। तो उन्होंने प्रार्थना की प्रभु हमें तो प्रजा सृष्टि के लिए आदेश दिया पर हमारे निवास स्थान बताइए हम कहाँ रहें। तो बोले कि पृथ्वी एकमात्र तुम्हारा स्थान है, परंतु अभी तो पृथ्वी रसातल जाता है, इस पृथ्वी का उद्धार कैसे हो। तब ब्रह्मा जी के नाक से ही एक सरसों के दाना के बराबर ये बराहदेव जी प्रकट होते हैं और देखते देखते सबके सामने विशाल रूप धारण करते हैं पर्वताकार प्रमाण में, और पानी के अंदर विशाल गर्जन के साथ में प्रवेश किया और जहां रसातल में पृथ्वी छिपी हुई है वहां से अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठा लिया और बड़े तीव्र गति से पानी के ऊपर नाव के भांति इसको स्थापन कर दिया। इसी तरह से इस पृथ्वी को धारण करने में उद्धार करने में बराहदेव जी सर्वप्रथम। तो भगवान के कल्पावतारों में एक एक बार एक एक अवतार होते हैं, परंतु बराह जी का अवतार दो बार होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन, जबकि षष्ठ चाक्षुष मन्वंतर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आए, तो उस हिरण्याक्ष के वध करने के लिए जो कि हिरण्याक्ष महाप्रतापी दैत्य इस पृथ्वी को गदा के प्रहार से पानी के अंदर डुबो दिया और नीचे पहुंचा दिए। इस प्रकार से महाबली हिरण्याक्ष को वध करने के लिए और भगवान युद्ध रस का आस्वादन करने के लिए दूसरे वार में श्वेत वराह के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए आदि वराह को कृष्ण वराह कहा जाता है, दूसरे वराह को श्वेत वराह कहलाता है। वर्तमान में भविष्यत मन्वंतरे श्वेत वराह कल्पे, इस प्रकार संकल्प में पाठ होता है। तो श्वेत वराह कल्प कहा जाता है, ब्रह्मा जी के एक महीना में 30 दिन में 30 कल्प होता है। ऐसे ऐसे करके वर्ष और वर्ष करके 50 वर्ष में परार्ध, अभी द्विपरार्ध दूसरा परार्ध चल रहा है इस प्रकार ब्रह्मांड की आयु में। ऐसे ऐसे बराहदेव जी पृथ्वी को उद्धार करके और हम सबका आश्रय प्रदान करते हैं, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इनकी प्रदक्षिणा करने से श्री पंडा जी ने जैसे कहा है सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है, उनके नासिका के ऊपर में मुखारविंद के ऊपर ये पृथ्वी देवी विराजमान है। इस प्रकार बराहदेव जी का स्पर्श का पा करके पृथ्वी देवी बड़े आनंद में मगना है, हम उनकी परिक्रमा करें। आए ब्रजमंडल का दर्शन करके जब गोवर्धन की परिक्रमा लगाए और आकर के गोविंद कुंड में बैठे, तो उस समय छोटे से बालक मेष में श्रीनाथ जी आए दूध का लोटिया लेकर के, बोले बाबा हमारे ब्रज में कोई भूखा प्यासा नहीं रहता है, तुम बिना खाए पिए ऐसे भूखे प्यासे कैसे पड़े हुए हो। उस समय तो उस बालक ने कहा कि मेरी मैया तुम्हें भूखा जान करके दूध भेज दिया, तुम दूध पी लेना और इस लोटिया को रख लेना, मैं पीछे ले जाऊंगा। इतना कह करके वो बालक तो मधुर वचनों से उनके चित्त को चुरा कर वहां से चल दिए। माधवेंद्र पुरीपा जो जीवन में कभी किसी से मांग करके खाते नहीं थे, आज माधवेंद्रपुरी जी का चित्त कुछ चलामान हो गया कि इस बालक ने आज मेरे मन को क्यों हर लिया, ये बालक है कौन? दूध तो पी लिया पर उस बालक में मन बैठा हुआ है। इतने में माधवेंद्रपुरी बाद जी जब रात के समय कुछ ऐसी तंद्रा सी आई झपकी ली, इतने में देखा कि वही बालक उपस्थित हुए। बोले कि माधव तुम्हारे लिए मैं बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, तुम कब आओगे और मेरी सेवा करोगे? देखो यहाँ जवनों के डर से पुजारियों ने मुझे इस जंगल में फेंक के चला गया है, मैं तभी से पड़ा पड़ा मिट्टी के अंदर में धस गया। तुम इस जंगल में से मुझे निकालो और ऊपर मुझे मेरी स्थापना करके मेरी सेवा पूजा को प्रकाश करो। इस तरह से माधवेंद्र पुरी जी को आदेश दिया। सुबह उठ करके अनर गांव के वहां सब के गांव वालों को बुलाया, बुला करके झाड़ियों को सफाई की, मिट्टी खोद करके श्री गोपाल जी को प्रकट किया। प्रकट करके ऊपर मंदिर के ऊपर वहां पत्थर धर करके गोविंद कुंड के पानी से अभिषेक कराकर उनका सेवा पूजा किया। गांव वालों ने वहां जिनके घर में जो कुछ दही दूध मक्खन और रोटी सब्जी जो कुछ बना हुआ जो कुछ था सब कुछ लाए, गोपाल जी को भोग लगाया। तभी से यह अन्नकूट प्रचलन हुआ है। जैसे कृष्ण ने सर्वप्रथम गिरिराज जी की पूजा की, इसके बाद में माधवेंद्रपुरी बाद जी ने अन्नकूट का प्रचलन किया था। उसके पश्चात गोपाल जी ने कहा कि मेरे शरीर में गर्मी नहीं जा रही है, साल भर तक तो अन्नकूट होता ही रहा। इसके बाद में जब गर्मी शांत नहीं हुई, ठाकुर जी ने आदेश दिया कि दक्षिण जाओ और दक्षिण में से मलय चंदन लेकर के आओ, मेरे शरीर में लगाओ। तब दक्षिण गए तो जाते समय बालेश्वर पहुंचे, जहां ठाकुर जी ने गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराया और तभी से उनका नाम पड़ गया है खीर चुरा गोपीनाथ। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी जगन्नाथपुरी गए और वहां जाकर के उन्होंने बहुत सारा चंदन लिया। वहां के जगन्नाथ मंदिर के बड़े बड़े पुजारी लोग जो हैं, उन लोगों ने ताम्र पत्र में लिखित करके पासपोर्ट बड़ार पास कराने का वो सब कर दिया व्यवस्था। लोगों द्वारा चंदन ले करके जब फिर से गोपीनाथ मंदिर बालेश्वर में आए तो ठाकुर जी ने आदेश दिया कि यही चंदन लगाओ, लगाने से हमें ताप शांत हो जाएगा। तब वहाँ चंदन लगाने लगे, जो कि आज तक चंदन की सेवा होती है ऐसे गोपाल जी को चंदन लगाया जाता है। इस तरह से गोपाल जी यहाँ रहे, जो कि ब्राह्मण पुजारियों को रखा गया। पीछे से श्री वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु जी के समय में हुए और इस प्रकार गौड़ीय संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय का दोनों अभिन्न अंग के रूप में परस्पर अंगांग संबंध रहा है और बड़े तालमेल और बड़े प्रेम मिलाप रहा है। जबकि चैतन्य महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के घर अड़ैल गांव तक गए थे और महाप्रभु जी से श्री वल्लभाचार्य जी का बहुत बार भेंट संपर्क हुआ है, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि से भी। इस प्रकार से राधा कुंड में जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भजन करते थे तो एक समय मानसी सेवा में कुछ बीमार पड़ गए। मानसी सेवा तो ये थी कि रोज दिन मानसी सेवा करते थे, तो एक दिन बीमार पड़ गए तो विठल नाथ जी यहाँ से कोई कविराज वैद्य को लेकर के वहाँ पहुँचे। वैद्य जी ने उनके नाड़ी पकड़ करके बताया कि आज इन्होंने चावल का भोजन किया इसलिए इनको बुखार आ गया है। सभी ने कहा कि ये कभी संभव हो ही नहीं सकता, जीवन में जिन्होंने कभी चावल नहीं खाया, एक दोना मट्ठा पीने वाले 24 घंटे में, ऐसे गोस्वामी जी चावल कैसे खा सकते हैं और उनको बुखार कैसे आया, ये कैसे आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे नाड़ी देखने में कोई गलती नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि पेट में चावल है और पचा नहीं है, उससे ये बुखार आया है। तब गोस्वामी जी ने अपना रहस्य खोला कि आज मैंने ठाकुर जी को मानसी सेवा में सब प्रकार के चावल सब्जी और खीर आदि बना करके भोग लगाया और उसी प्रसाद को मैंने मनी मन ग्रहण कर लिया, इसी से आज मुझे बुखार आया है और कोई बात नहीं है। तो ठाकुर जी की ये इच्छा थी, ऐसे मन से सेवा को करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा को प्रकट कर दिए। इस प्रकार से हम लोगों के गोस्वामी वर्गों में और वैष्णव संतों में परस्पर एक सौहार्द भाव बना हुआ था। तो पीछे से श्री वल्लभाचार्य जी के सात पुत्र हुए। इस प्रकार सात घड़ा में जबकि श्री गोपाल जी यहाँ इनके प्रेम में बसीभूत होकर के आए थे, कभी श्री रूप सनातन गोस्वामी आदि ने भी उनका यहाँ दर्शन भी किया है, चैतन्य महाप्रभु जी आए यहाँ भी दर्शन किए हैं। इस तरह से उनके चरणार बिंद जो है जत्तेपुरा में रखे हुए थे, तो गोस्वामी लोग ला करके यहाँ चौबिया पड़ा में रखे थे। आज यहाँ उस चरणार बिंदु को जो श्रीनाथ जी के चरणार बिंदु के रूप में जानी जाती है, ऐसे जैसे हम सुनते हैं तो ये चरणार बिंदु कैसे अपूर्व दिव्य दर्शन है, पहले कभी हम लोगों ने दर्शन नहीं किया है। आज से जमुना प्रसाद जी चौबे जी महाराज ने हम लोगों को दर्शन करा दिए हैं, तो ऐसे यहाँ पर हम प्रणाम करते हुए हम चले। और यहाँ के और कोई विषय हो तो हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में तथा श्री चौबे जी के पंडा जी के आश्रम में हम लोग चलते हुए मथुरा शहर के मध्यवर्ती बीच कर्णकार में अवस्थित श्री अनंत पद्मनाभ जी के आदि वराह, कृष्ण वराह तथा सिद्ध वराह और श्रीनाथ जी के चरण युगल तथा सिद्धार्थ नाथ जी का दर्शन करके यहाँ पर हम गतश्रम टीला में श्री गतश्रम नारायण जी के चरण सान्निध्य में उपस्थित हुए। मथुरा धाम इसको गोलोक वृंदावन के रूप में ही देखा जाए तो भौम और गोलक पर जगत में सर्वोच्च स्थान सर्वोर्ध स्थान जो है उसको गोलक कहलाता है, और भौम यानी भूमि से संपर्क होने के कारण उनकी लीला भूमि को भौम गोकुल या भौम मथुरा मंडल ब्रजमंडल इसी के रूप में जाना जाता है। तो गोलक में जैसे परात्पर तत्व भगवान कृष्णचंद्र विराजमान है, वहां पर 16 शक्ति के साथ समस्त देवताओं के साथ में समस्त ब्रह्मा शिवादि देवतागण, यहाँ तक कि जितने भी विष्णु परिकर हैं, अंशावतार कलावतार इत्यादि के रूप में जितने भी अवतार हैं, केशव नारायण गोविंद मुकुंद मधुसूदन दामोदर ऋषिकेश पद्मनाभ, ये जो 12 देवता हैं तथा नृसिंह हरि जनार्दन आदि करके 8 जन, ये समस्त भगवान विष्णु तत्व हैं, चतुर्भुज रूप में अवस्थित होते हैं और वैकुंठ में इनका नित्य सन्निधान बताया गया है। इसी प्रकार गोलोक वृंदावन में गोलोक में ये सभी अवतारों का स्थान है जो कि नित्य धाम में अवस्थित हैं, और यहाँ भूम जगत में भी नित्य श्री विग्रह के रूप में भक्त जनों के द्वारा सेवा पूजा को ग्रहण करते हैं और भक्त जनों का मनोनयनानंद वर्धन करते हैं, सबकी इच्छा सर्वान कामान पूरयति, सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से भगवान के अवतार समूह विराजमान है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष आप लोगों ने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ब्रज विलासी श्याम सुंदर ब्रज में विलास करते हुए 11 वर्ष के पश्चात जब मथुरा में आए, कंस का विनाश किया, कंस के मारे जाने पर देवकी वसुदेव को जेल खाने से उन्होंने मोचन किया, बंधन मोचन किया, और पिता माता के लिए अपनी क्षमा प्रार्थना की, हमारे आने में देर हो गई है, आप लोगों को दुराचारी कंस ने बहुत कष्ट दिया है, इसके लिए हमें क्षमा करें। तो देवकी वसुदेव के मन में संशय दूर नहीं हुआ कि दुराचारी कंस कैसे मरा जाएगा, ये तो मरने वाला नहीं है, और मर गया ये जो सुन रहा हूँ जदि जी जा, अब एक भी मथुरा वासियों का प्राण नहीं रहेगा, सबके प्राण को समाप्त कर देगा, ऐसे ही ये दुराचारी दुष्ट है। तो देवकी वसुदेव डरे हुए थे, सबके मन में भी कुछ संशय भरा हुआ था, ये कंस बेहोश होकर के पड़ा हुआ होगा, ये मरे नहीं होंगे। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, बोले कि कंस तो बहुत भारी है, इतना वजन है कि उठा नहीं सके कोई, तो उसके खिस्त हुए ले गए, सबके संशय को दूर करने के कारण। तथा दुरात्मा होने के कारण उसको खींचते हुए ले गए, जो कि नाला बन गया, कंसखार बतलाता है। इस तरह से वहां ले जाकर के ध्रुव घाट में उनका संस्कार कराया। उसके पश्चात कृष्ण बलराम विश्राम घाट पर आए, यहाँ पर उन्होंने स्नान किया। तो इसलिए यहाँ इस घाट का नाम पड़ा है विश्राम घाट, जहाँ पर स्नान करने से, जहाँ का दर्शन करने से हम लोगों के संसार में आवागमन का सदैव विश्राम हो जाता है, पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है, कृष्ण के चरणों में आश्रय मिलता है। तो वहाँ विश्राम घाट में स्नान करके यहाँ पर गतश्रम नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने वहाँ स्नान करके इसी टीला पर, उच्च टीला पर आए करके उन्होंने विश्राम किया था। इसलिए यहाँ श्रम दूर करने के कारण गतश्रम नारायण जी बने हैं। शंख चक्र गदा पद्म, ये जो चतुर्भुज रूप है, ये विष्णु के रूप होते हैं। जितने भी भगवान के अवतार हैं, वे सभी चतुर्भुज रूप में होते हैं। केवल अस्त्र धारण के भेद से, नाम के भेद से ही उनको जाना जाता है। सबके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, केवल धारण करने का एक ही केवल पार्थक्य है। सिद्धार्थ संहिता में इसका वर्णन आया है, जब इस अवतारों के चार ही अस्त्र हैं और चारों अस्त्रों के धारण के क्रम से ये सब नाम से अलग अलग हैं। इस प्रकार यहाँ पर गतश्रम नारायण के रूप में आप विराजमान हैं, नित्य ही सेवा पूजा को ग्रहण करते हैं। जैसे अभी वहां बताया था कि भगवान ने मथुरापुरी में कुछ दिनों तक रहते हुए जरासंध के आक्रमण पर एक एक वार में 23 अक्षरणी करके सेनाओं का अपने संहार किया, और 3 करोड़ कालजवन, जब 3 करोड़ सैनिक लेकर, और उधर से जरासंध ने भी 8 वार में आक्रमण किया, तब यहां से धुर्रा ग्वालियर के आसपास धुर्रा में पहुंचकर वहां गुफा में मुचकुंद महाराज के द्वारा कालजवन का आपने विनाश करवाया, और जरासंध के सामने से होते हुए रणछोड़ जी बन करके आप द्वारका नाथ बन गए, अर्थात द्वारका में पहुंच गए, वहां जाकर के लीलाएं की। इस प्रकार से द्वारका नाथ कृष्ण जो कि नित्य द्वारका में होते हुए ब्रजवासियों के, ब्रजगोपियों के प्रेम को बढ़ाए हैं, जो सुदीर्घ विरह विप्रलम्बमय प्रेम जगत के लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, अनुभूति कराने के लिए इस प्रकार आपने प्रकट किया है। इस विरह विप्रलम्बमय प्रेम जो कि द्वारका में तो रहे हैं, परंतु निरंतर कृष्ण के गोपियों के विरह में सदा सर्वदा रोते रहे, प्रेम में डूबे हुए, और इधर ब्रजगोपियां कृष्ण के विरह में अधीर होती जा रही है। जबकि कृष्ण ने कहा है, गोपियों तुम लोगों का मन हमारे बीच में पड़ा हुआ है, मेरा मन प्राण इंद्रिया तुम लोगों के बीच में, जैसे तुम लोग स्वप्न या स्फूर्ति मानती हैं, परंतु मैं तुम लोगों की प्राण रक्षा के लिए निरंतर तुम्हारे मन में, हृदय में, स्फूर्ति में आविर्भूत होता हूँ। स्मरण, स्फूर्ति और आविर्भाव तीनों रूप में तुम्हारे सामने निरंतर, तुम्हारे साथ लीला विलास करके नीति जाई जदुपुरी जाता हूँ। चैतन्य चैतामित में वर्णन आता है, कृष्ण ने कहा तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए सेवी हमें नारायण, नारायण की हम सेवा करते हैं। यादवों के, जदुवंशियों के, गोपजनों के पूजित विग्रह थे, नारायण इष्ट देवता माने जाते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, और जबकि कृष्ण ही उनके प्रेमास्पद प्राण प्रियतम है। इस प्रकार कृष्ण भी कह रहे हैं कि हम सेवी अभी नारायण, लोक लीला में तो नारायण की सेवा की बात कही है, और कहीं पर सेवी अभी नारायण प्राणों की उपासना करते हैं, यानी ब्रज गोपियां जब विरह में अधीर हो जाती हैं, उस समय उनके हृदय में प्राणों में आविर्भूत होकर प्राणों की रक्षा करते हैं, उनके स्फूर्ति में आविर्भूत होकर के लीला विलास करते हैं उनके साथ, परंतु प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं पड़ते। तो उसको कभी गोपियां स्वप्न मानती हैं, फिर झूठ मानती हैं। तो कृष्ण ने इस तरह से समझाया, सांत्वना दिया, इस प्रकार के विरहमय प्रेम को बढ़ाया, और उसके द्वारा राधा कृष्ण के जो नित्य मिलन है ब्रज गोपियों के साथ में, ब्रज मिला से श्याम सुंदर ब्रज चंद आनंद कंद नित्य ही वृंदावन विलासिनी होकर विलासी होकर के वृंदावन विलासिनी राधा जी के साथ नित्य विहार परायण है। ये मथुरा मंडल नित्य धाम है, मथुरा में जत्र भगवान नित्यम सन्निहितो हरी, मथुरा में भगवान नित्य काल विराजमान है, नित्य ही भक्त जनों के इस प्रकार प्रेम को बढ़ाते हुए विराजमान है। आज प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, ऐसे ही हम लोगों की प्रेमाभक्ति बढ़ाए, अपने चरणों में अनुराग बढ़ाए, इतना कह करके हम यहाँ से चलते हैं। लोगों ने वहाँ श्रवण किया था कि श्रीनाथ जी श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी ने प्रकट किया था गोपाल जी को। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जब आए गिरिराज गोवर्धन पर और गोपाल जी ने उनको दूध पिलाया और इसके बाद कहा कि कवे आसी माधव मोरे करी वे सेवान तुम्हार लागे करी हमी बहु प्रतीक्षा। तो माधव कब आकर के मेरी सेवा करेंगे, तुम्हारे लिए मैं बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा। तब वहाँ पर उन्होंने माधवेंद्र पुरीपाद जी ने गोपाल जी को प्रकट किया और अन्नकूट उत्सव किया। इसके बाद में जबकि चंदन लेने को चले गए और सेवा पूजा की व्यवस्था करके छोड़ गए, तो धीरे धीरे ये सेवा पूजा बल्लभ श्री बल्लभ संप्रदाय के हाथ में आए और श्री बल्लभाचार्य जी की सात पुत्र हुए, तो उनमें ये सात घड़ा कहलाता है। तो इसी सात तो सतघड़ा में यहाँ पर ये सभी लोग इतने प्रेमी थे, भक्त थे, ब्रजवासी जन जिनके प्रेम से ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ आकर के उन ब्रजवासी महिलाएं जो हैं भक्त, ये उन्हीं के प्रेम में उनकी सेवा पूजा आदि ग्रहण किए हैं। इस तरह से यहाँ बहुत दिनों तक रहे, जबकि श्री बल्लभाचार्य जी पीछे श्री विट्ठलनाथ जी पीछे आए, तो यहाँ से ठाकुर जी फिर गोवर्धन गए। इस प्रकार से वर्तमान श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा में है उन्हीं का यह स्थान है, यह प्राचीन स्थान माने जाते हैं, इसलिए परिक्रमा में हम सभी लोग दर्शन करते हैं। यहाँ महाराज जी और सभी वैष्णव लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ तक कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए इस प्राचीन स्थान को हम प्रणाम करते हुए चलते हैं।
आज गुरु वैष्णवों के अनुगत में जहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ गोवर्धन के तराई क्षेत्र में सेठाना मठ गाँव जिसको पेंट वन कहा जाता है, कृष्ण ने जिस समय लीलाएं की हैं, ये समस्त गंभीर वन प्रदेश जंगल के रूप में था, अति मनोरम और यह प्रेममय लीलामय भूमि है। ये समस्त भूमि ऐसी है जहाँ राधा कृष्ण की संभोग और विप्रलम्भमय लीलाओं के उद्दीपन कराते हैं।
यहाँ पर राधा कृष्ण कहेगी भिन्नता होगी, उतना ही धाम अपना स्वरूप प्रकाश करेंगे। एज यू हैव ऑनर As you are so lenient, धाम विल कम इन अवर हार्ट। हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, परिश्रम विफल नहीं जाए। We are so much doing hard labors, but in vain it should not go. So, with so honor, we should do all this. Gaur Brahmanande. हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये चंद्र सरोवर है। इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर है। चंद्र सरोवर इसलिए है कि यहाँ पर रास हुई थी और इस रास में चंद्र चलना भूल गए, तारे चलना भूल गए, बसेजान तारे चंद्र सब ग्रह नक्षत्र सूर्य इत्यादि सभी लोग, सूर्य जब रात में पीछे थे वहीं पर रह गए, फिर इधर में आए नहीं, और चंद्र यहाँ के यहाँ पर खड़े रह गए, तारा और नक्षत्र सब चलना भूल गए कृष्ण का ये रास्ते करके।
देवता लोग विमानों में अपनी स्त्रियों के साथ में आए। देवताओं ने देखा कृष्ण को, कृष्ण का रूप देख करके ही वो मुग्ध हो गए, बाकी रास उन्होंने नहीं देखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा वर्णन किया, रास दर्शन करने का सौभाग्य नहीं हुआ, उनकी स्त्रियों ने रास को दूर से दर्शन किया और वो पागलिनी बन गई, उनके केश खुल गए, अपने पतियों के गोदी में रहते हुए और मूर्छित होकर के गिर गई, शुद्ध बुद्ध नहीं रही, बाकी का रास नहीं देखा, केवल एक झलक देखा उसी में मूर्छित होकर के सब गिर गए। और चंद्र यहाँ पर ताराओं के साथ में, अपने सब नक्षत्रों के साथ में ब्रह्मा की एक रात, जिसमें कितने शतयुग कितने कलि 1000 चतुर्युग इसमें बीत गया, और चंद्र अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ, सूर्य भी इधर में नहीं आए, जितने ग्रह नक्षत्र बृहस्पति इत्यादि सब कुछ एक झलक कृष्ण का देखा रूप, इसलिए अपने स्थान से नहीं गए, इसलिए चंद्र प्रतिबिंबित हुआ यहाँ और कृष्ण की रास को एकदम प्रकाशित किया, और चंद्र यहाँ पर खड़ा रहा, इसलिए इसको नाम है चंद्र सरोवर। यहाँ पर हमारे गोस्वामी लोग भी रहते थे पीछे से ये स्थान, और वहाँ पूछ रहे ऊपर में जो गोपाल जी थे, जतिपुरा के ऊपर में जो गोपाल जी थे, उन विग्रहों का पूजन करने का रूप और रघुनाथ गोस्वामी ने उनके हाथों में दे दिया। इनके बड़े मित्र थे विट्ठल जी, जो कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे दूसरे नंबर के, इसलिए उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उनके ऊपर में प्रभाव था। उन्होंने कहा, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मान कृपा निधे स्व प्रिया चरण किंकरी करो। ओ श्याम सुंदर, यदि आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हो तो बस यही चाहता हूँ, आपकी प्रिया श्रीमती राधिका जी हैं, आप शिखंड शेखर हैं, मुरली मनोहर हैं, राधिका के रसिक हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, तो बस यही चाहता हूँ कि अपनी प्रिया जी की चिरकाल के लिए हमें किंकरी बना दीजिए, और कुछ नहीं करें। प्राणनाथ विश्वभान नंदिनी श्री मुखाब जरस लोल सटपट राधिका पद तले कृति स्थिति त्वाम भजामि रस केंद्र से, हे रस केंद्र शेखर, आपके चरणों का मैं भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, आप अनुग्रह करके अपने श्रीमती राधिका जी के नित्य काल के लिए किंकरी की किंकरी हमको बना दीजिए। वल्लभाचार्य जी इस स्थान में रहे, और उसके बाद में उनके गोपीनाथ जी उनके ज्येष्ठ पुत्र हुए, और उनके छोटे भाई विठल जी, विठल जी बहुत प्रतापशाली प्रभावशाली आचार्य हुए, तो सूरदास जी वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे, अष्ट छात के कवि हैं 8, उनमें सबसे प्रधान यही हैं, इनका सूर सागर ग्रंथ है जो संकलित करके प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कृष्ण के लीला चरित्र का विशेष करके बात्सल्य रस का वर्णन किया, और वल्लभाचार्य ने उनको यही स्थान दिया कि चंद्र सौ में रह करके सेवा करें। सेवा करते करते अद्भुत विलक्षण रूप में अंधे हैं किंतु सब कुछ देखते हैं, अंधे हम लोग हैं जो नहीं देखते, ये सब जगत की चीजों को देखते हैं, प्रभु का रूप नहीं देखते, वो अंधे नहीं थे। एक बार भक्तों ने कहा, सूरदास जी आप कृष्ण कैसे हैं, इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। सवेरे का समय था, वो दिन सारे कपड़े उनके हटा दिए गए, नंगे गोपाल है ना, नंगे उनको खड़ा कर दिया ठाकुर जी को, उनको सब कपड़े हटा दिए गए, और वो सब लोग देख रहे थे। सूरदास जी पूछा, आप वर्णन कीजिए, तो सूरदास जी ने उनका वर्णन किया, आज तो आपकी बड़ी छवि बनी है, आप तो आपने कोई आज कपड़ा ही धारण नहीं किया, नंग धड़ंग आप ऐसे ही खड़े हुए हैं। लोगों ने कहा, ये कैसे जान लिए सूरदास ने, उनकी आत्मा की दृष्टि होती है, भक्त लोग अपने समाधि में उनका दर्शन करते हैं अपने आत्मा से, जो हम लोग इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम सांसारिक चीजों का दर्शन कर सकते हैं, परमार्थिक चीजों का हम दर्शन इन आंखों से, भक्ति का दर्शन नहीं कर सकते हैं, गुरु का दर्शन नहीं कर पाते, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, ये लोग यथार्थ रूप में दर्शन करते हैं। हमारे रूप सनातन जी ने जैसा दर्शन किया है, मदन मोहन जी का, गोविंद उनके लिए आ गए, मदन मोहन जी आ गए, गोपीनाथ जी उनके लिए आ गए, ऐसे ये सब लोग महात्मा हैं। इनके भीतर में हम चल करके अभी देखेंगे, दर्शन करेंगे। इनका स्थान है, ये चंद्र सौर है, चंद्र सौर का आचमन लीजिए, प्रार्थना कीजिए जो वो लीला हम लोगों के हृदय में स्फूर्ति हो। यही प्रार्थना करके हम अब वहाँ पर चलेंगे। सूरकुटी है, यहाँ पर वल्लभाचार्य जी का एक बहुत बड़ा भारी वैभव था, बहुत ही समृद्ध यहाँ पर उनकी सेवा होती थी। आजकल कुछ सूना सा हो गया है, ऐसा उजड़ा उजड़ा सब वक्त ही नजर आता है। वृंदावन अपने धाम में पूर्ण है, लोग वृंदावन को सजाना चाहते हैं, यमुना के किनारे बांध बांधना चाहते हैं इसको, किंतु वो संपूर्ण ऐसा है, मणिमुक्ताओं से बंधा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग स्थूल दृष्टि वाले जिसको सजाने की चेष्टा करते हैं, किंतु वो तो अपने में परम सुंदर है। बोलो चंद्र सरोवर की जय, रास लीला की जय, वल्लभाचार्य की जय, विट्ठलाचार्य की जय, गोपीनाथाचार्य की जय, सूरदास की जय, गौ प्रमानंदे हरि हरि बोलो।
राधा जी इत्यादि सभी उनकी कृपा चाहती हैं। जब वो आकर के उनके चरणों में गिर जाती हैं राधिका जी, तो उनको गोदी में उठा लेती हैं, कहिए तुम हमारा बेटा है, कृष्ण से कम नहीं, कृष्ण एक बेटा है तो तुम है, किंतु तुम हमारा अधिक बेटा है,
अधिक प्रिय है।
इसलिए ब्रजकुल महिलानं प्राणभूताखिलानं पशुपति गृहिण्या कृष्णवत प्रेम पात्रम, ये राधिका जी ऐसी है। इसलिए जसोदा जी जहाँ रहेंगी सब गोपी लोग, राधा जी चंद्रावली प्रभृति जितनी है, ललिता विशाखा, उनको आशीर्वाद देती है तो बतलाओ तो, और यदि उनकी कृपा नहीं होती तो ये मिलन में बाधा आ जाती। बुलाती हैं कैसे अपने घर में रसोई के लिए और उनसे मिलन कराती हैं, वो सब जानती हैं किंतु कुछ नहीं जानती ऊपर से। वैसे ही माताएं होती हैं अपने पुत्र वधु के साथ में, सभी ऐसे जो गुरु घंटाल है वो सब समझती हैं। गौर प्रमानंदे योग लिखा है बैठक, मतलब क्या कि पहले वल्लभाचार्य जब यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए तो लोगों ने उनको दर्शन करने नहीं दिया।
नहीं, नहीं, कृष्णदास किया,
कृष्णदास जी
वल्लभाचार्य
के
छाप के कवियों में थे।
अच्छा अच्छा, तो वल्लभाचार्य की ये बैठक है यहाँ पर, ये प्रधान उनकी गद्दी है, सूरदास इत्यादि का है, अष्ट छापों में से एक कोई कृष्णदास जी हैं, कृष्ण के सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। तो जब आए तो उन लोगों को एक नियम है, यहाँ से कोई प्रवेश करता है उसमें वही प्रवेश करता है जिनका ब्रह्म संबंध हो गया है। ब्रह्म संबंध माने क्या?
भगवान के साथ कुछ
अनुभूति
तो भगवान
उधर से जाएगा कोई तो झाड़ी भरेंगे, पानी कुछ रहता है ग्लास इत्यादि, और जिनका ब्रह्म संबंध नहीं हुआ वो नहीं जाएंगे। तो कृष्णदास को यह कह दिया गया तुम्हारा ब्रह्म संबंध नहीं है, तुम नहीं दर्शन कर सकते। वो बड़े विरह में आतुर होकर के तो यहीं पर बैठ गए और वो दर्शन को नहीं जा सके। पीछे से लोगों को जब प्रतीत हुआ होगा तब फिर उनको लेकर के गए हों। बस ये है विप्रयोग का। गौर प्रमाणे सांप्रदायिक तथ्य है, अपना सांप्रदायिक तथ्य है। राधा जी का भाव ही ऐसा है कि उनके प्रेम में थपथपी लगा, कैसे पाऊं, कैसे हमारे हृदय में ऐसा प्रेम हो जो हमको जैसा ये देखती है प्रेम से, मैं भी ऐसे ही। यही एक सुना आर लो, ये क्या बतलाया, ये राधिका की प्रणय महिमा कैसी है, ये यहाँ तक हुआ। राधा या प्रणय महिमा के पुरुषा, ये पहला हुआ। यही एक सुना, एक तो यही एक ये हुआ, आर सुना आर लोभेर प्रकार, आर सुना आर लोभेर, और जो दूसरा जो कारण है उसको सुनो, पहले वाला आप सुना। इसलिए सुनो में एक में मतलब सुनो एक ऐसा नहीं, एक
दर्पण में प्रतिबिंब में या विशेष करके द्वारका में वो क्या लीला हुई थी नौ वृंदावन के लिए, उसमें उन्होंने देखा अपने मणि के स्तंभ में उस समय विष्णु को ललित माधव का वर्णन, तो वह कृष्ण का माधुर्य कब देखा, जबकि बलदेव जी ने उनको हाथों में बंसी दे दी, सोने का मुकुट हटा दिया ब्रह्मा जी के कहने से और उसमें मोर मुकुट दे दिया और ब्रज जैसे ही उनके कपड़े लगते सब पहना दिया और हाथों में भी बांसी दे दी और बलदेव के द्वारा उनको उठाया और बलदेव लजाते कृष्ण लजाते लजाते उठे और यशोदा जी के हाथ से उन्होंने वो लिया और लेने के बाद मक्खन लजाते लजाते ये मैया हमको ऐसे देश से सोते हुए देख करके कुछ ऐसे स्तंभित हो गई है, रोहिणी मैया जी ने उनको आदर जातना कुछ किया और वहां से जब दूसरों को देखा तो कृष्ण का रूप एकदम बदल गया, एकदम ब्रज का भाव आया। उस समय में कैसे चलते हैं, अंगभंगी कैसे होती है, उनके तरफ में गोपियों की तरफ में कैसे देखते हैं, उसमें मैं प्रतिबिंब उन्होंने देखा है और देख सकते और मेरी माधुरी ऐसी है कि जामोन्ती सप्तधामा रुक्मिणी प्रति की सप्तधामा एकदम पागल हो गई, यहाँ तक कि पद्मा भी वो बूढ़ा चुका हुआ पेड़ में फिर आ गया और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी, देख सकते कृष्ण एकदम चमत्कृत हो। थोड़ी देर के बाद में जब उनको पता चला समुद्र को देखा बलदेव जी जब हंसने लगे तो अरे तो वृंदावन में गाय कहाँ है, ये तो पुतलियां हैं, अरे ये तो गोपियां नहीं, ये तो मूर्तियां हैं, कहाँ है हम यहाँ पर समुद्र कहाँ से वृंदावन में आ गए, तो ये वृंदावन ही तो क्या है, धीरे धीरे बल देखते अब परकलित पूर्वम कष्टमास्कार कारी पुरुष नमद गरिया ने माधुर्य अयम अहम अपनी हंस प्रेक्ष जंगलुब्ध चेता सरसम मुखम काम राधिका की जैसी ललका होती है कृष्ण की पुरुष माधुरी को गैरी माधुरी को लीला माधुरी को ये सब देख करके वो खुद ही समर्पित होकर के राधिका जैसे आस्वादन करती है ऐसे उनके अंदर में लाता ये मतलब स्वभाव का वो राधिका के यही दूसरा कारण है किसी का दूसरा लोक है अनंत अद्भुत पूर्ण मोर माधुरी अद्भुत माने और उनका भविष्य जो कभी नहीं हुई हो वो होता है अद्भुत जो राम इत्यादि किसी भी रूप में जैसा नहीं हुआ और अनंत एक ही लीला माधुरी का हम तो यही वर्णन कर किसी लाखों किसी किसी केवल राशि उनका भी राशि नहीं आप अपने सबका वर्णन नहीं किया खुद को करने के लिए आदेशा पिता और उसके संदर्भ में और इतना सर्वती का भावना रखती है कुछ भाव को मिलाऊ को जो उनके भाव बदलने सब कुछ समाधि भागवत में कई थोड़ी एक राशि का वर्णन करके और उनके आप अनंत ऐसी लीलाएं हैं पूर्ण, और वो पूर्ण है मोर माधुरी मधुरी मधुरी श्री जगत के बिहार के हो नहीं पाए।